ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, विश्व स्तर पर स्वीकार्य मुद्रा के रूप में उभरते रुपये पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विकासशील देशों की अनुसंधान और सूचना प्रणाली के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्र।
श्रोताओं, सुर्खियों में आपका स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हैं। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले आप श्रोताओं को बताएं कि रुपया कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होता जा रहा है और विश्व स्तर पर इसे कैसे स्वीकार करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है।
पिछले कुछ वर्षों में जैसा हम देख रहे हैं, लगातार प्रयास हुए हैं कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक महत्वपूर्ण फलक के रूप में सामने आया है। और इसमें हम देख रहे हैं कि कई देश भारत के डिजिटल आर्किटेक्चर के साथ, भारत के रुपए के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उससे जुड़ने के प्रयास के साथ, और साथ ही जो भारत में उनकी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसके साथ जुड़ करके इसको लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन, या अगर हम कहें विनिमय की दरों में जो एक्सचेंज रेट में जो कमी लाई जा सकती है, उसके प्रभाव को सामने रखते हुए रुपए में ट्रांजैक्शन की प्राथमिकता को आगे बढ़ा रहे हैं।
ये श्रोता समझना चाहेंगे कि रुपया के विश्व स्तर पे स्वीकार किए जाने के आखिर क्या क्या लाभ होते हैं।
देखिए, उसके कई लाभ हैं। सबसे पहला, जैसा मैंने कहा, आज आप अगर किसी से कोई 2 करोड़ का या 5 करोड़ का कोई सामान अगर आज आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको डॉलर में उनको पेमेंट करना पड़ती है। डॉलर का पेमेंट कई दफा ज्यादा समय भी लगाता है और एक्सचेंज रेट में हम दोनों देश, हम भी और जो हमारे विकासशील दूसरे देश हैं, वो भी इसमें पैसे को खोते हैं। तो अभी आप अगर देखेंगे तो भारत ने हाल ही में सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ऐसे कई देश हैं जो हमारे सामने ये मुद्दा लेकर आए कि हम क्या लोकल करेंसी में ही ट्रांजेक्शन कर लें। तो सबसे पहला लाभ ये है कि हम जो करेंसी को डॉलर और डॉलर से रुपये में और फिर उनकी लोकल करेंसी में करते हैं तो उसमें हम लोगों को अनावश्यक रूप से अभिभार भी उठाना पड़ता है जो सरचार्ज होता है करेंसी कन्वर्शन का, और दूसरा इंटरनेशनल करेंसी पर्टिकुलरली डॉलर जिसके माध्यम से ये कन्वर्शन होता है वो भी बार बार बदल रहा है, उसकी वैल्यू भी बार बार बदल रही है। तो इसके चलते जो नुकसान हमारे निर्यातकों को और आयातकों को होता है उससे हम बच सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा इसका यह है कि आपको कोई रिजर्व लाइन लेकर के एक्सपोर्टर्स को नहीं रखनी पड़ती कि हमें इतने डॉलर्स लेके रखने पड़ेंगे क्योंकि हमें ये एक्सपोर्ट करना है या हमें इंपोर्ट करना है। तो ये इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और वैसे ही सरकार के लिए, जैसे हमारी ऑयल की आमदनी अब कई गुना सुधर चुकी है क्योंकि अब हम रुपए में कई लोगों के साथ ट्रांजैक्शन की शर्तों के दायरे में आ चुके हैं, तो उससे उन देशों को भी फायदा होता है क्योंकि उनको रुपया मिलता है तो जो वो हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं उससे वो हमें पे कर सकते हैं और हम रुपए में उन लोगों को ऑयल का पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारे लिए फायदा है कि हम कम कॉस्ट में इस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। तो विभूति जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ ट्रेड के ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है उसको कम करने का है।
जी हाँ, निश्चित तौर पे। और हमने कोविड के टाइम पे भी देखा कि हमने, हालांकि जो हमारे संबंध है रूस के साथ, जो हमने ईंधन लिया और जो हमने फिर अपना कारोबार शुरू किया उसमें।
बिल्कुल सही है। और ये रूस के साथ हमारा रुपए रूबल ट्रेड कुछ समय पहले से चल रहा था, 80 के दशक में भी हुआ, फिर बीच में छूटा, फिर शुरू हुआ, लेकिन अभी नया जो बदलाव आया है वो 4 तरह के हमारे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव से आया है। सबसे पहला, जो 2022 में हमने एक सर्कुलर जारी करा और हमने अपने बैंकों को इस बात की इजाजत दी कि वो जो पेमेंट सेटलमेंट है वो रुपी में कर सकते हैं। तो अब इसके लिए कोई सेंट्रलाइज्ड एसटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जैसी एंटिटी नहीं है, ये हमने डेलीगेट कर दिया उन पावर्स को। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रिजर्व बैंक की तरफ से इस सर्कुलर के रूप में रहा। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि जो रुपए के डेरिवेटिव्स हैं जो फॉरेन करेंसी में और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं उसको भी हमने सामने ला करके रखा। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि जो हमारे डोमेस्टिक बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उनको भी इस बात की इजाजत दे दी। गिफ्ट सिटी जैसा गुजरात में हमने एक बनाया है उसके जैसा हमने अब कई लोगों को इसकी इजाजत दी है कि वो फॉरेन एक्सचेंज प्राइजेस के ऊपर नॉन रेसिडेंट्स को किसी भी समय ट्रांजैक्शन करने का दे सकते हैं। और चौथा, हमारा जो रुपए डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स थे वो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने ला के रखे। तो एक आप देखते हैं कि ये कई ऐसे नीतिगत निर्णय लिए गए जिनमें कि अब हम देख रहे हैं कि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग रुपए को ट्रांजैक्शन के रूप में देख रहे हैं। अगर आज आप देखें तो जो आपने रशिया का कहा उस कतार में अब आप देख सकते हैं सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, हांगकांग है, श्रीलंका है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कुवैत है, ओमान है, कतार है, और अब तो मैं देख रहा हूं कि यूनाइटेड किंगडम भी रुपए को एक्सेप्ट कर रहा है। नेपाल और भूटान में तो लीगल टेंडर ही माना जाता है, तो नेपाल राष्ट्र बैंक कहें या रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान कहें, तो ये दोनों जगह तो ये लीगल टेंडर माना जाता है। तो रुपए की ये जो स्थिति में सुधार अंतर्राष्ट्रीयकरण के कारण हुआ उसमें कई इन नीतिगत निर्णयों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
अच्छा, बहुत पहले भी हम देखते रहे हैं कि रुपया की मान्यता जो है कुछ अन्य देशों में रही है, लेकिन वो मान्यता होना और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पहचान मिल रही है, जो कामकाज हो रहे हैं, दोनों में आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप इसे किस रूप में देखते हैं?
देखिए, अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो दो महत्वपूर्ण कारण हमारे सामने निकल करके आते हैं। शुरू में भारत का व्यापार उस स्तर का नहीं था जिस स्तर का अभी हम देख रहे हैं, जहां एक मेजर क्वांटिटेटिव चेंज आया है। पहले अगर आप देखें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिर्फ 0.5% हिस्सा रखता था, आज हम 1.8% हिस्सा रख रहे हैं, जो इस वर्ष जैसा आंका जा रहा है हम 2.4 तक 2025-26 में पहुंचेंगे। तो ये जो विश्व के 2005 के हमारे अनुभवों के आधार पे ये जो ग्राफ निकला है, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उभरते हुए भागीदारी को देखते हुए। तो अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी तभी सार्थक है जब आपकी करेंसी आपके साथ हो। तो अब इस करेंसी के अनुभव को और हमारी रुपए की करेंसी को यूज करने की ताकत को अब हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ी है। अगर वो हिस्सेदारी विभूत जी कम रहेगी तो हम उतने ट्रांजैक्शन सेटल नहीं कर पाएंगे।
सचिन जी, हम सभी जानते हैं कि मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक दिन में नहीं होता, इसके लिए लंबी विकासवादी प्रक्रिया की जरूरत होती है। और यह सच है, दुनिया के कई देश मानते हैं और कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो हमारी किन सोचों के कारण दुनिया के कई देशों में रुपये को स्वीकार करना संभव हो पाया है?
एक जो सबसे बड़ी बात है विभूति जी, मैं समझता हूँ विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक कमेटी 2006 में अपॉइंट हुई थी, SS तारापुर कमेटी
जी।
तो तारापुर कमेटी ने कहा था कि जो करेंसी कन्वर्शन होता है, जिसको आपको याद होगा कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया से कहा था कि आप कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर चले जाइए, तो हम लोगों ने तब वो निर्णय नहीं किया था और बार बार ये कहा जाता रहा। लेकिन जैसा अभी रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भाई फुल कन्वर्टिबिलिटी एक प्रोसेस है, वो एक इवेंट नहीं है। तो हमको जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस मिले, जो ऐसे दिशा निर्देश मिले, भारत ने उसको छोड़ के स्वयं अपनी नीति को आगे बढ़ाने के संबंध में विचार करने का जो ये मन बनाया है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यही तय कर सकता है कि हम रुपए को किन किन लेवल पे कन्वर्टिबिलिटी में लेके आएंगे। आपको याद होगा 80 और 90 के दशक में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने वर्ल्ड बैंक की इन प्रिस्क्रिप्शंस को माना, और अभी भी 2013-14 में कई देशों ने IMF और वर्ल्ड बैंक की इन कंडीशनलिटीज को माना, हमने नहीं माना। और वही आप देखेंगे इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में भी वही हुआ, 2022 कोविड के बाद में जो IMF का प्रिस्क्रिप्शन था वो भारत ने नहीं माना, हमने खुद अपना सोच सामने रखा। तो अपना सोच देश का सामने रखना अत्यंत आवश्यक है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो कदम हम उठा रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, और इसलिए रुपए के कन्वर्शन और रुपए की जो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम एक्सेप्टेबिलिटी देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत ऑटोनॉमी निर्णय की जो स्वयं की क्षमता है उसके विकास की तरफ ध्यान दे पाया है।
यह भी है कि अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्रा की जरूरत लंबे समय से समझी जा रही है, और ब्रिक्स की बैठक में भी ये चर्चा हुई थी, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस संबंध में चीन और भारत की मुद्रा को एक जरूरी एक विकल्प समझा था। आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में चीन से हमें कुछ और समझने की जरूरत है?
भारत का उद्देश्य रुपए को बढ़ाने के पीछे डॉलर के साथ कंपटीशन का नहीं, हमारा उद्देश्य अपने व्यापार में, जैसे हमने कहा कि जो कॉस्ट है उसको कम करने का है। ब्रिक्स के कुछ देश और आपने जैसा चाइना का नाम भी लिया, तो चाइना का अगर देखें तो वो उनका एक एंटी वेस्ट का एक एजेंडा है कि हम वेस्ट का विरोध करेंगे और इसलिए हम पश्चिम के देशों का विरोध करेंगे, डॉलर का विरोध करेंगे, इसलिए हम डीडॉलराइजेशन की बात करेंगे और इसलिए हम अमेरिका का विरोध करते हुए अपनी करेंसी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये भारत का उद्देश्य नहीं है। भारत का उद्देश्य सभी राष्ट्रों के साथ मिलकर के काम करने का है, अमेरिका के साथ भी है, चीन के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, ये सब हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं। रशिया के साथ हमारा ऑयल इम्पोर्ट है, चाइना के साथ में दूसरे तरह के इम्पोर्ट हैं, यूएस के साथ भी है, लेकिन हमारा उद्देश्य रुपए के व्यापार को आगे बढ़ाने के संबंध में सिर्फ इतना ही है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम की जा सके। जो हमारे लोग इन देशों में काम कर रहे हैं उनका जो पैसा वो यहाँ वापस बेचते हैं उसकी ट्रांजेक्शन की कॉस्ट को हम कम कर सकें। तो जितना रुपए का लेन देन व्यापार बैंकों के माध्यम से किया जा सकता है, करेंसी कन्वर्शन में जो पैसा जाता है उसको हम बचा सकते हैं, ये हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यूएस की करेंसी एक महत्वपूर्ण अंग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको चैलेंज करने की दृष्टि से जो चाइना बार बार प्रयास कर रहा है वो हमारा उद्देश्य उससे बहुत ज्यादा मिलना नहीं है। हमारा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्टेबिलिटी को बना करके रखने का है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से आईएमएफ बार बार चाइना को इस बात की वार्निंग दे रहा है कि उनका जो एक्सचेंज रेट है वो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है, वो मन मर्जी से तय करते हैं कि उनका डॉलर के साथ कन्वर्शन वैल्यू कितना होगा। भारत का ऐसा नहीं है, हमारी करेंसी कभी 83 रुपए एक डॉलर के लिए जाती है, कभी 90 जाती है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में उसका एक बैंड ही रहा है, वो उतना ही डाइवर्जन हमारे करेंसी के वैल्यू में आता है। तो मार्केट फोर्सेस जो है वही उसको डिटरमिन करते हैं, हम आर्टिफिशियली उसको नहीं करते हैं, जबकि चाइना के केस में ऐसा नहीं है। तो चाइना एंटी वेस्ट एजेंडा को लेकर अगर आगे बढ़ेगा तो भारत का उसके साथ उतना मिलना संभव नहीं हो सकता।
जी हाँ जी, अभी आपने श्रोताओं को समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से किस तरह से विनिमय दर में नियंत्रण रहता है, वस्तु की लागत की दर भी कम रहती है और विश्व में मुद्रा की मांग भी बढ़ती है। अगर हम अपने भविष्य को ध्यान में रखें तो आगे आप और क्या देख पा रहे हैं?
पिछले दिनों भारत की अर्थव्यवस्था में जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनकी भागीदारी बढ़ी है। अब दिक्कत क्या होती है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो आसानी से डॉलर के अकाउंट्स को होल्ड भी कर सकती हैं और उसमें पेमेंट भी कर सकती हैं। जब रुपए का ट्रांजेक्शन होता है तो कई छोटी छोटी कंपनियां, मझोली कंपनियां भी इस ट्रांजेक्शन का हिस्सा बन सकती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव देश में आने की स्थिति अब बन रही है, जहां हम इन छोटे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की जो चैनल्स हैं उनसे हम इनको जोड़ सकेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि आरटीजीएस जो हमारा डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस को फैसिलिटेट कर रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शंस बढ़ रहे हैं। अब रिजर्व बैंक ने जैसा कल अपने 90वें दशक के जो उनका समारोह था उसमें कल कहा कि हम डिजिटल करेंसी भी ला रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस के संबंध में भी काम कर रहे हैं। तो ये जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस विभूति जी होना शुरू होंगे तो कई छोटे कंपनीज अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजेक्शंस बिना किसी लागत के या बिना किसी विनिमय दर में अपने पैसे को खोते हुए कर सकेंगे। ये हमारा भविष्य अत्यंत महत्वपूर्ण भविष्य होगा।
एक बात हम और देखते हैं कि जब भी किसी मुद्रा का कोई अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, वो जब स्वीकार किए जाते हैं तो उस देश के जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में भी लाभ होते हैं। तो रुपया का बढ़ता प्रभाव दुनिया में भारत की बढ़ती धाक को भी दर्शाता है, इसे आप किस रूप में देखते हैं?
ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और ये दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और राजनयिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में आप देखें तो जैसा जियोपॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं कि भारत के प्रति लोगों का झुकाव जो है वो बड़ा है, दक्षिण की हम बात करते हैं या ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, उनका भारत में विश्वास बढ़ा है। तो ये दृष्टि से जो गवर्नेंस के मॉडल हैं, गुड गवर्नेंस के जो मॉडल हैं, सुशासन के जो मॉडल हैं, वो वित्तीय क्षेत्र में भारत की धाक को सिर्फ एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में नहीं, एक विश्वास के रूप में देख सकते हैं। और आरबीआई जैसी हमारी संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विश्वास को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण काम भी किया है। तो वो दोनों चीजें हमारे सामने हैं। तो इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी और व्यापार की दृष्टि से भी, सुशासन की दृष्टि से भी, वित्तीय संस्थाओं में विश्वास एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इनको एक साथ जोड़ करके देखने की आवश्यकता है।
सचिन जी, आप आए और श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे विश्व स्तर पर स्वीकार्य मुद्रा के रूप में उभरते रुपये पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विकासशील देशों की अनुसंधान और सूचना प्रणाली के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया।